राम
राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे
हरे कृष्णा। तो प्रभु श्री परशुराम का धन्यवाद करते हैं कि आज आप सबको कार्तिक मास के स्वागत के लिए निमंत्रण देकर हरि कथा और सत्संग के सुनने का अवसर दिया है। धन्यवाद वैकुंठपति प्रभु और सारी संगत का जो कीर्तन के लिए पधारे हैं और हमको सेवा का अवसर दिया है, आप सबका धन्यवाद। पूर्णिमा इस महीने में दो पूर्णिमा है, अभी दो पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा थी, आज भी पूर्णिमा है। पूर्णिमा दो घड़ियों में पड़ रही है, दो सनराइज में पूर्णिमा पा रही है, दो सनराइज में एक पूर्णिमा है, इसलिए दो दिन पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा को कहते हैं अश्विनी पूर्णिमा। ये अश्व जो अभी अश्विनी महीना गया इसकी पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का नाम है रास पूर्णिमा और इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि सर्दी शुरू होती है भारत में इस पूर्णिमा से। आपके देश में तो इस पूर्णिमा से गर्मी शुरू होती है, लेकिन जो भी हमारे आध्यात्मिक कार्य हैं, वो धार्मिक जो भी हमारे कार्य हैं, वो सब भारत के पंचांग के अनुसार हम यहाँ करते हैं। तो ये शरद पूर्णिमा आज शुरू हो गई, कल से शरद पूर्णिमा ही चल रही है और इसको रास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आठ वर्ष के थे। जब 7 वर्ष के भगवान थे तो उमावस के दिन, उमावस का मतलब दिवाली का दिन, जो उसके दूसरे दिन गोवर्धन धारण किया, 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया, 8वें दिन अंदर इंद्र आया, अभिषेक किया, सुरभि गाय लाया, 9 दिन के ऊपर सारे ब्रजवासी नंद बाबा को शिकायत करने गए कि तुमने हमको बताया नहीं, तुम्हारा बेटा इतना शक्तिशाली है, इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, हमारी बिरादरी तुमसे बायकॉट करेगी, आप ऐसे हमको छुपा के रखा, ये कैसे हो गया। और तब नंद बाबा ने सबको बिठा के कहा, गर्ग ऋषि ने कहा था जन्म के समय कि ये साक्षात नारायण के समान रहेगा और आपके सब संकट दूर करेगा। तो सब संतुष्ट हो गए। एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने, द्वादशी को नहाने के लिए गए और फिर वहां से वो यक्ष लेके चले गए उसको। तो भगवान श्री कृष्ण वापस उनको लाए और फिर दर्शन कराया उनको वैकुंठ का। जब नंद बाबा वापस लौट के आए वरुण लोक से, तो नंद बाबा ने देखा, अरे हमारे छोटे बच्चा कृष्ण अभी 7 साल का है, इसके सामने वरुण खड़ा होकर इसको प्रणाम कर रहा है। जब वापस आया तो सब ब्रजवासियों को बताया कि हमारा लाला है ना ये कन्हैया, ये वरुण देवता, इसको बहुत भेंट दिया, हाँ वो गिफ्ट दिया, प्रणाम किया। तो सबने कहा लाला लाला हमको भी वैकुंठ दिखाओ। कन्हैया ने बोला आओ सब ब्रजवासी आपको वैकुंठ दिखाता हूं। और भगवान श्री कृष्ण छोटे से 7 साल के बच्चे सब ब्रजवासियों को लेकर गए और जहां अक्रूर घाट है वहां खड़े होकर बोला देखो ऊपर वैकुंठ देखो, और सबको वैकुंठ का दर्शन होने लगा। भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे हैं, ओ नंद सुनंद आदि सब ऊपर बैठे हुए हैं, लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। तो आपसे नारी बड़ा सुंदर है ये। तो ये ग्वाल बाल बोलता है, हैं कन्हैया कहां है, गाय कहां है, हाँ गैया कहां है, गोवर्धन किधर है, गोवर्धन नहीं है, गाय नहीं है, कन्हैया नहीं है, क्या करेंगे इस वैकुंठ को। हे भैया कन्हैया, गाय गोवर्धन जमुना नहीं है, वैकुंठ नहीं चाहिए आपका, बंद करो। तो भगवान ने वैकुंठ के दर्शन को लुप्त कर दिया। और ठीक 1 साल के बाद भगवान 8 साल के हो गए और अश्विन पूर्णिमा का दिन आया। 1 साल पहले कात्यायनी देवी की पूजा की थी सब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने के लिए, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। आज भगवान उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पूर्णिमा का चंद्र बहुत सुंदर निकलता है। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते हैं कि आज भी इस पूर्णिमा के चंद्र को देखने के लिए बहुत से लोग आगरा में जाके ताजमहल को देखते हैं, उसके मार्बल के ऊपर जो चांद के किरणें गिरते हैं उसको देखने के लिए जाते हैं। प्रभुपाद ने ऐसे कृष्ण बुक में लिखा है। तो ये पूर्णमास के चंद्र के दर्शन करने के तो बहुत से लोगों को उत्सुकता रहती है, लेकिन आज श्री कृष्ण इस चंद्रमा का उगते हुए, चंद्रमा कैसे लग रहा था, लाल लाल जैसे उग रहा था, लाल नजर आ रहा था, लाल ऐसे नजर आ रहा था जैसे पति बहुत समय के बाद वापस लौटे और अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कृष्ण बुक में ऐसे लिखा है। इतना सुंदर आज लग रहा था कि कृष्ण का इच्छा हुआ कि सब गोपियों की मांग में सिंदूर भरना है अथवा उन सबको स्वीकार करना है। तो कृष्ण ने क्या किया, मल्लिका के पुष्प खिले, बहुत बहुत सुंदर वातावरण था, कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि में हर एक गोपी का नाम लेके बुलाया। आपको तो आश्चर्य लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है, आपके मोबाइल से जिसको फोन करता है उसी को जाता है ना, सबको तो नहीं जाता है। जैसे आप मोबाइल से किसी को फोन करते हैं उसी की घंटी बजती है ना, तो कृष्ण की बांसुरी मोबाइल है और जिसका नंबर मिलाते हैं उसी की घंटी बजती है। तो जिस जिस गोपी का नाम लेकर बुला रहे थे वो गोपियां जो जो काम कर रही थी उस काम को बीच में छोड़ दिया। कोई गाय से दूध निकाल रही थी, दूध निकालना बंद कर दिया, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को वहां छोड़ दिया, कोई पति को भोजन खिला रही थी वहीं छोड़ दिया, कोई खुद खा रही थी वहीं छोड़ दिया, और फिर कोई श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल डाला एक का भूल गई, कान में जो डालना था वो नाक में डाल दिया, और प्रभुपाद ने लिखा है कि नीचे के कपड़े ऊपर पहन ले, ऊपर के कपड़े नीचे पहन लिए। इसको बोलते हैं पागल जैसा हो जाना। तो भगवान जिसको बुलाता है वो पागल ही हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है कि भाई देखो, अगर तुम चाहते हो कि संसार में सुखी रहो, अपने परिवार के साथ रहो, सुख शांति मिले, तो कभी वृंदावन मत जाना, और अगर वृंदावन चले भी जाओ तो बंसी बट पे मत जाना, और बंसी बट पे चले जाओ तो भी कृष्ण को वहां बांसुरी बजाते हुए मत देखना, एक बार देख लिया तो तेरा संसार समाप्त हो जाएगा, तू पागल बन जाए, कृष्ण के प्रेम में तू पागल हो जाएगा। तो आज ये सारी गोपियां कृष्ण के प्रेम में पागल होके और निकली हैं घर से, कहां निकली है, जंगल के अंदर, वन के अंदर, और अब रात हो रही है, सायंकाल के समय भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां घर से सब काम छोड़ के पहुंच गई, और वन के अंदर जैसे पहुंची भगवान श्री कृष्ण का, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए ब्राजी आप सबका स्वागत है, आप आ गई, अच्छा किया, तो ठीक है हमने बुलाया, आप आ गई, बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप वापस जाओ, अब वापस जाइए। स्त्री को ऐसे रात को नहीं आना चाहिए अकेला, और फिर आप तो पीछे पति छोड़ के आए हैं, वो आपको ढूंढते होंगे, आपके बच्चे रोते होंगे, आपका दूध चढ़ा हुआ है, आपकी गैया सबको बीच में छोड़ के आई है, और किसी भी पतवरता ना स्त्री को घर से ऐसे निकल के नहीं आना चाहिए, आप अपने घर वापस जाइए। सब गोपियां एक दूसरे को देख रही हैं आपस में कि ये क्या, वहां से हमको बुलाया है, फिर बोलते घर जाओ वापस। तो भगवान श्री कृष्ण यहां नारी की शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री का क्या धर्म है, स्त्री के धर्म की बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन दे किसको रहे हैं, गोपियों को, जो सर्वधर्मान परित्यज, वो सर्वधर्मान परित्यजी है। गोपियां कौन सी क्लास की हैं, कौन सी कक्षा की हैं, वो सर्वधर्मान परित्यजमाम एकम शरणम। इस दुनिया में ये श्लोक तो भगवद गीता में दो श्लोक हैं, दोनों श्लोक साथ हैं, ये 18वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्तो फिर सर्वधर्मान, इसका उदाहरण दुनिया में सवाए गोपियों के अलावा और कोई नहीं, जो बहुत क्लियर कट इसका एग्जाम्पल है वो सिर्फ गोपियां हैं, जिन्होंने लोक लज्जा के धर्म को छोड़ा, नीति मर्यादा के धर्म को छोड़ा, संसार के सारे बंधनों को तोड़ा, ये सर्वधर्मान परित्यज्य की परिभाषा है। और किसी ने आज तक ऐसा मन भगवान श्री कृष्ण, और किसी ने कहा ठीक है आप जाके मन मुझ में लगाओ ना, मेरे को देख के क्या करोगी, जाके मन मुझ में लगाओ, घर में बैठ के मन ही लगाना है ना मुझ में, जाके मन लगाओ। तो ऐसे चर्चा चल रही थी, इतने बीच में गोपी ने आखिर कहा कि आप हमसे इतना क्रूर व्यवहार क्यों करते हो, व्हाई यू आर क्रूअल। धर्म का अर्थ है आपको प्राप्त करना, आपके मिलने के बाद संसार में और किसी चीज की आवश्यकता क्या है, ये तो सब हम छोड़ के आई है क्योंकि आपको प्राप्त करना। बहुत बड़ा आपस में जो है वो डिस्कशन हो रहा है, कॉम्पिटिशन चल रही है। कृष्ण धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और वो सर्वधर्मान परित्यज्य के स्तर के ऊपर खड़ी है। और फिर गोपियों ने जो कहना शुरू किया उसको प्रणय गीत कहते हैं। प्रणय गीत का मतलब बड़े दुख के साथ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जो भी कहना था वो कहा। और इस कॉम्पिटिशन में एक कृष्ण कह रहा है घर जाओ, गोपियां कहती हैं नहीं जाएंगी। ये कॉम्पिटिशन उस वक्त तक चली जहां कृष्ण हार गए और गोपियां जीत गई। कृष्ण हार गए और गोपियां जीत गई। ये बहुत बड़ी महिमा है कृष्ण भक्ति की कि कृष्ण अपने भक्तों के साथ जब कॉम्पिटिशन होती है तो क्लाइमेक्स तक जाते जाते कृष्ण हार जाते हैं और उसका भक्त जीत जाता है और इसी में कृष्ण की जीत है। ये जो प्रतिपदा का मतलब पहला दिन जो प्रतिपदा है, कार्तिक का पहला दिन टेक्निकली प्रतिपदा से होता है। गौड़िया वैष्णव क्या है कि 14 को चतुर्मास शुरू करते हैं तो बाद में पूर्णिमा आ जाती है और पहली कल जो है वो प्रतिपदा है, वो कार्तिक मास की प्रतिपदा कल की पहली है। ये तो पूर्णिमा का उत्सव है, शरद पूर्णिमा का। तो बात क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृष्ण हार गए, गोपियां जीत गई। और ये पूरा महीना जो हम उत्सव मनाएंगे दामोदर मास का, इसमें भी यशोदा और कृष्ण के बीच में कॉम्पिटिशन है। यशोदा कहती है बांधूंगा, कृष्ण की शक्तियां कहती है ये तो अचिंत्य है, इसको कौन बांध सकता है, इसके अंदर बाहर कुछ नहीं है, सभी इसी के अंदर है, तो इसको कैसे बांधोगे। दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलती है और इस कॉम्पिटिशन में एक स्तर ऐसा आता है जहां कृष्ण यशोदा के परिश्रम को देखता है, पसीने को देखता है, उसके हृदय में कृपा का उदय होता है, दया का उदय होता है और कृष्ण हार जाता है और यशोदा जीत जाती। ये दूसरा, भगवान हार जाते हैं और भक्त जीत जाता है। भीष्म पिता में और कृष्ण के बीच में ऐसे कॉम्पिटिशन चली। भीष्म कहता है मेरा वचन है कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा और कृष्ण कहता है मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मैं वचन करके आया। लेकिन एक कॉम्पिटिशन की हद ऐसी पहुंची जहां कृष्ण ने अपना वचन तोड़ दिया और भीष्म देव के वचन की रक्षा की। तो ऐसी प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मायावादी लोग कहते हैं हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है भक्त बनने से भगवान से बड़ा बन जाता है आदमी। भगवान के बराबर क्यों बने, भगवान से बड़ा बन जाएगा, भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है। अब नंद बाबा कृष्ण से बड़े हैं और कृष्ण को कहते हैं मेरे चप्पल उठा के आओ तो कृष्ण उठा के आ जाता है। यशोदा मैया कान से पकड़ के बांधती है, ऐसे कोई वैकुंठ में नारायण को बांध नहीं सकता। ऐसे द्वारका में कृष्ण के सामने कोई खड़ा हो के बांधने की बात दूर है, हाथ भी लगाना मुश्किल है। लेकिन ये जो विशेष भगवान श्री कृष्ण की महिमा है, ये अद्भुत महिमा है जिसमें भक्त भगवान से बड़ा। अर्जुन कहां बैठा हुआ है रथ के ऊपर, देखिए अर्जुन ऊपर बैठा है, कृष्ण नीचे बैठा है, तो बड़ा कौन हुआ, जो ऊपर बैठा है वो बड़ा हुआ ना। तो कृष्ण ने अर्जुन को ऊपर स्थान दिया है, वो तो रथी के स्थान पे बैठा है, कृष्ण सारथी बन के बैठा है, सारथी नीचे होता है, रथी ऊपर होता है। एक बार पोप उतरा एयरपोर्ट पे, कृष्ण का गुरु पोप, तो किसी कारण से उसकी गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची थी, तो एक टैक्सी ड्राइवर को बोला तुम पीछे बैठो मैं चलाऊंगा। अब पोप को कौन इनकार करे, ड्राइवर पीछे चला, अब पोप गाड़ी चलाएगा तो लाल बत्ती के ऊपर रुकने की जरूरत नहीं है, तो भगवान का आदमी है कैसे रुकेगा। अब वो जो जा रहा है तो पुलिस वाले सब परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, सर ये तो पोप नहीं, सर गाड़ी वाला तो सब नियम तोड़ रहा है, ब्रेकिंग ऑल दी रूल्स। तो बोले इसको रोको, चालान करो। बोलो नहीं, डर लगता है। कौन है? पता नहीं कौन है। बोला कौन है? आखिर मंत्री है, मिनिस्टर है, कौन है? बोला नहीं, उससे बड़ा। बोला उससे कौन बड़ा है? बोला जिसकी पोप गाड़ी चला रहा है वो कितना बड़ा आदमी होगा। वो पीछे ड्राइवर के लिए कह रहा है, जो पीछे ड्राइवर बैठा था। बोला पोप जिसकी गाड़ी चला रहा है वो कितना बड़ा आदमी होगा। वो टैक्सी का ड्राइवर था। तो भगवान ऐसे रथ चला रहे अर्जुन का, अर्जुन पीछे बैठा है, तो सभी अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन बड़ा है, भगवान तो नीचे गाड़ी चला रहे। तो भगवान अपने भक्तों को ऊपर स्थान देते हैं और उनकी सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं कि कब मौका मिलेगा। तो ये गोपियां भगवान की शक्ति हैं, कोई स्त्रियां नहीं है। गोपी को स्त्री नहीं समझना चाहिए, गोपी भगवान की शक्ति है। और भगवान की पहली विस्तार की शक्ति राधा रानी है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं से प्रकट होती है, और सारी गोपियां राधा रानी का एक्सपेंशन है। तो राधा रानी का ही विलास है सारी गोपियां। तो गोपियां कोई स्त्रियां नहीं है, और कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रास लीला, ये भगवान की शक्ति और भगवान के बीच में आदान प्रदान प्रेम का है। कृष्ण और गोपियों की रास लीला और संसार के स्त्री और पुरुष का आपस में मिलना, इन दोनों के बीच में चैतन्य चरितमृत कहती है इतना अंतर है जितना लोहे और सोने में अंतर है। दोनों हैं तो मेटल, लेकिन एक सोना है एक लोहा है। संसार काम वासना से भरा हुआ लोहे के समान है, और काम वासना से मुक्त कृष्ण और गोपियों का प्रेम शुद्ध सत्व के स्तर के ऊपर है। ये गोपियां नित्य सिद्ध गोलोक वासनी है, ये गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं, ये गोपियां दंडक आरण्य के ऋषि हैं जो गोपियां बन के आए हैं। तो ये साधारण समझने की बात नहीं है। उन गोपियों के साथ भगवान ने आज की रात पे रास क्रीड़ा की, और फिर भगवान उनके बीच में से लुप्त हो गए और एक ही गोपी को साथ ले गए। सब गोपियां उनको ढूंढने निकली और कहा कि एक के साथ गया है। आगे जाके देखा एक को भी पड़ा हुआ पाया, वो भी रो रही थी, हमको भी छोड़ के चला गया, वो राधिका थी। फिर सब ढूंढने लगी, फिर कहा ये ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन दुख ये हो रहा है अब भगवान चले गए। वहां गोपियां ये नहीं सोच रही कि हमारा घर जाना चाहिए, घर का क्या, ये सोच रही है कृष्ण कहीं अंधेरे में इस वन के अंदर उसके पांव में कांटा न लग जाए, उसका पांव इतना कोमल है। चिंता कृष्ण की कर रही है, घर की चिंता उधर भी गोपियों को नहीं आती। तब कहते हैं इस वन में ढूंढने से अब नहीं मिलेगा, कहां जाना चाहिए? बोला जहां रास क्रीड़ा में हम यमुना के तट पे बंसी जो बंसी वट है वहीं वापस चलती है, और वहां जाके फिर गाना शुरू किया, उसको गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत जैसे गोपियों ने गाया, कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। भगवान का तो ये वचन है कि जहां मेरे भक्त गाते हैं वहां मैं आता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां भक्त गुणगान करते हैं वहां भगवान आते हैं। गोपियों ने क्या गाना शुरू किया, कृष्ण महिमा गोपी गीत में कृष्ण प्रकट हो गया। गोपियों ने कहा आप हमको छोड़ के क्यों चले गए? बड़ा आपस में तर्क वितर्क हुआ, बहुत अच्छा भागवत में इसको लिखा है, बड़ा सुंदर एक दूसरे का तर्क वितर्क है। और कृष्ण कहा मैं सच पूछो तो आपको इसलिए छोड़ के गया क्योंकि आपका प्रेम और बढ़े। जुदाई में प्रेम बढ़ता है, विप्रलम्ब भाव को उत्पन्न। कृष्ण का उद्देश्य क्या था इसके पीछे? इसके पीछे विशेष उद्देश्य ये था, अब इस रासलीला के समय के बाद ये 35 अध्याय, ये 33 अध्याय हो जाएगा, और फिर 2-3 अध्यायों पूरे होने के बाद कृष्ण 100 साल के लिए वृंदावन से चले जाएंगे। 100 साल के लिए रासलीला से पहले भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को भक्ति दी और ब्राह्मणों को बहुत बड़ी शिक्षा दी, और ब्राह्मणों का कृष्ण साक्षात भगवान है। तो पहले ब्राह्मणों को अनुकूल बनाया कि ब्राह्मण कल ये नहीं कहें कि कृष्ण रासलीला करता है। उसके बाद इंद्र देवता का मान भंग किया, गोवर्धन धारण किया। उसके बाद सारे अपने परिवार वाले गोपों को वैकुंठ का दर्शन कराया। अब वो भी कृष्ण को साधारण नहीं समझते हैं, देवता भी कृष्ण को साधारण नहीं समझते, ब्राह्मण भी कृष्ण को साधारण नहीं समझते हैं। अब ये सब रासलीला की भूमिका है, प्रीफेस है रासलीला का। ये सारे अब रासलीला कृष्ण की क्या है, और 8 साल का कृष्ण है। आज भी 8 साल का बच्चा लड़कियों के साथ अगर कहीं खेलता है तो किसी को उसके ऊपर कोई भी एतराज नहीं होता है, नो ऑब्जेक्शन। 7-8 साल का बच्चा, तो कृष्ण की उम्र तो 8 साल है, और 8 साल का कृष्ण जब ये रास्ता कृष्ण ही का, मैं आपका प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने आपके बीच में से अपने आप को लुप्त कर दिया था, लेकिन आओ अब रास क्रीड़ा करेंगे। और तब कृष्ण ने इस रात को ब्रह्मा के दिन के बराबर बना दिया, आज वाली रात को, और सारी रात बड़े आनंद के साथ गोपियों के संग में कृष्ण ने रास क्रीड़ा की। और एक शब्द कृष्ण को कहना पड़ा, गोपियां मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता, न पारे अहम, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता, आपने मेरे लिए जो सब कुछ त्याग किया है, घर पुत्र परिवार सब, इसका मैं I am indebted, I cannot repay, मैं ऋण नहीं उतार सकता हूँ। कृष्ण गोपियों का ऋणी हो गया, और इस ऋण उतारने के लिए कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो उन्होंने संन्यास लेकर घर बार परिवार सब छोड़ा, और भारत के कोने कोने में जाकर कृष्ण 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 ऐसे गा कर वो ऋण उतारा गोपियों का। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने का एक अंतरंग कारण है कि उन्होंने गोपियों का ऋण उतारने के लिए संन्यास धारण किया था। अब आज से, अभी तो हमने 2 दिन पहले से भगवान की सेवा शुरू की है, भगवान की सेवा तो नित्य होनी चाहिए, तो कार्तिक मास शुरू होता है। कार्तिक मास तो ऐसे अश्विन के बाद कार्तिक आता है, तो कार्तिक उसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन उसका डिवोशनल नेम है दामोदर मास। एक ऑफिशियल नेम है, एक जैसे किसी भक्त का ऑफिशियल नेम होता है एक, और दीक्षा का नेम होता है दूसरा, तो ऑफिशियल नेम और डिवोशनल नेम। तो इस महीने का डिवोशनल नेम है दामोदर मास, और ये दामोदर लीला दिवाली के दिन हुई थी। दिवाली के दिन इस लीला का गठन हुआ था, और ये लीला भगवान श्री कृष्ण की आयु 3 साल की, 3 साल राउंड अबाउट 3 इयर्स थी तब ये लीला हुई थी, और ये लीला गोकुल की है। गोकुल में भगवान 3 साल 4 महीने तक रहे, और 3 साल 4 महीने के बाद गोकुल छोड़ के वृंदावन चले आए। तो दिवाली के दिन 3 कारण 4 कारण है। पहला कारण यह है कि दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा हुआ करती थी वृंदावन ब्रज में, तो बहुत बड़ा उत्सव होता था, इसलिए सारे लोग इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे। दूसरा दिवाली का दिन है तो छुट्टी पे लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, और तीसरा यशोदा के बाद बहुत गोपियां कंप्लेन लेकर आए कि तुम्हारा बेटा हमारे घर में माखन चोरी करता है। तो यशोदा का हो सकता है कि ये जो मेरे काम करने वाली हैं ये अच्छा माखन नहीं बनाती है, तो मैं अपने हाथ से माखन बनाऊं। एक तो बहुत से फेस्टिवल के काम में लगी हुई थी बहुत सी काम करने वाली, कुछ छुट्टी पे गई थी, और ऐसे यशोदा के मन में भाव भी आया कि मैं अपने हाथ से स्वयं दधि मंथनम, स्वयं अपने आप दधि का मंथन करूं। और कृष्ण के मन में क्या था, कृष्ण का अभी मेरी माँ यशोदा ने थोड़े दिन पहले मेरे को दूध पिलाते हुए मैंने ऐसे जमाई ली यानी किया, मेरे मुंह में ब्रह्मांड देखा, फिर बलराम जी और गोपू ने जाके शिकायत की कि मिट्टी खा रहा है जमुना के तट पे, माँ ने कान पकड़ के कहा मुंह खोलो, और मुंह खोला मैंने फिर ब्रह्मांड देख दिया। अब वहां ऐसे न हो कि मेरी माँ समझे कि मैं भगवान हूँ और मेरे को किसी अलमारी के अंदर बंद कर दे और फिर आरती करे पूजा करे, तो फिर तो मैं यहाँ लीला कर नहीं पाऊंगा, ग्वाल बालों के संग खेल नहीं पाऊंगा। अब ऐसे कुछ करना चाहिए कि माँ को ये विश्वास हो जाए कि मैं उससे डरता हूँ और मैं उसका बेटा हूँ, उसको ये कभी भी मन में ना आए कि मैं भगवान हूँ, इसलिए भगवान ने इस लीला करने का संकल्प किया। तो रात को यशोदा ने ये निर्णय किया कि कल मैं स्वयं दही मंथन करूंगी। तो दही मंथन करूंगी तो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और 9 लाख गायों में से एक गायों का ग्रुप था, उसका नाम था पदम गंधा गाय। पदम कहते हैं लोटस को। उनके दूध, उसको ऐसा स्पेशल हर्ब्स खिलाए जाते थे कि उनका दूध जो था वो बहुत बड़ा फ्रेग्रेंस था, लोटस फ्रेग्रेंस। ऐसी कई गायों का दूध एक गाय को पिलाते थे। उस गाय का दूध मां ने रात को बॉयल किया, यशोदा मैया ने मिट्टी के मटके में बॉयल किया। पुराने जमाने में मिट्टी के मटके होते थे, उसमें बॉयल होता था। और कितना दूध हुआ होगा मां के घर में? 10 किलो से ऊपर दूध बॉयल किया। 10 किलो कहता हूं, आप सब देखते हैं 10 किलो घरों में दूध होता है, यहां इतनी थैली लाते हैं उससे काम चलाते हैं। गाय से दूध निकाला, देखा नहीं कि दूध होता? दूध की नदियां बहती थी इस देश में, भारत में हम कहते हैं दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध में पड़ गई पत्ती काली, ओम जय चाय की प्याली। जैसे चाय आई तो दूध की नदियां बहती थी, उसमें पत्ती काली पड़ गई। और काली भैंस भी सफेद दूध देता है, लेकिन हमने सफेद दूध को काला कर दिया। जब दूध काला होता है तो अंदर का क्या हाल होगा? अंदर तो वैसे ही काला है, तो काम कैसा आदमी करेगा? काला काम करेगा, इसलिए दुनिया सारा काला काम कर रही है। हरे कृष्ण। तो यशोदा माँ रात को दूध बॉयल किया, उसमें जामुन डाला, दही डाला और ढक के रख दिया। सर्दी की ऋतु आई ना, तो सर्दी में दही ऐसे नहीं जमेगा, उसको कंबल उड़ा के रखते हैं मटके को। गर्मी को मैं बर्फ रखनी पड़ती है, चारों ओर से ठंडा करना पड़ता है। ये दही जिनको निकालना आता है उनको मालूम है, कंबल मटके को ढकने का, ढक के रख दिया। और माँ सुबह 4 बजे उठी, नहाया धोया, अपनी अलमारी से बहुत सुंदर क्षोमम रेशमी साड़ी निकाली, सेफ्रॉन कलर की। और मां ने साड़ी पहना, बहुत सुंदर साड़ी को, बालों में फूल मालती के फूल लगाए, हाथों में बहुत सुंदर चूड़ियां डाली, कमर में करधुनी डाली और बेल्ट बांधा, इसलिए कि 10 किलो के दही को जब मंथन करना है तो बहुत जोर लगता है, तो उसको बोलते हैं कमर कसना। अपनी कमर को अच्छी तरह से कसा, नुद्धम लिखा है, पहला तीसरा श्लोक है, कमर को ऐसे अच्छी तरह से बांधा और मां दही मंथन करने के लिए बैठी। दही का मटका आगे रखते हैं और बैठने के लिए एक स्टूल होता है, लेकिन वो लकड़ी का चारों ओर होता है, बीच में पट्टे ऐसे लगे होते हैं सॉफ्ट से, उसको मंची बोलते हैं, मंच, उसके ऊपर बैठते हैं स्पेशल। किसी किसी के पीछे बैक रेस्ट भी होती है ऐसे, ताकि ऐसे बैठने में ज्यादा कमर पे दर्द, और कहीं कहीं तो खड़े होके मंथन करना पड़ता है क्योंकि भारी होता है। तो मां मंथन करने के लिए तैयार हुई। अब मां मंथन करने के लिए तैयार हुई तो हाथ से मंथन कर रही है और मुख से कृष्ण के गीत गा रही है, बाल चरितानी यानी यानी गीतानी बाल चरितानी, कृष्ण के बाल चरित्र के गीत गा रही है। कृष्ण के गीत गा रही है, कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही है और मन में सोच रही है कि सोया रहने दो, उठेगा तो काम नहीं करने देगा, मक्खन तैयार होगा तो इसको उठाऊंगी। माँ बड़े आनंद से गोविंद गोपाल जय जय गा रही है, पूतना हारी तृणावत अरी, ऐसे उसका शत्रु इसका मारने वाला ऐसे गा रही है। कंस तक अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन बाकी 3-4-5 मारे थे उनकी कथा बड़ी सुंदर कर रही है। माखन चोर जो भी कहना था कह रही है। कृष्ण कमरे में सोया हुआ था, माँ के साथ सोते थे, तो देखा कि अरे माँ नहीं है, माँ कहाँ गई? आंखें मलते हुए माँ माँ बोला, मैया, आवाज नहीं आया। कान दे के सुना, अरे दही मंथन हो रहा है। दही मंथन के साथ माँ के जो चूड़ियां हैं वो छन छन कर रही हैं, बम छन बम छन। अरे कीर्तन हो रहा है, है? कहाँ कीर्तन हो रहा है, कीर्तन का उठ हाँ, देखा ये तो दही मंथन कर रही है मैया, उधर जाके खड़ा होगा, माँ मैया भूख लगी है दूध पिलाओ, मैया तो इतनी मगन है मंथन करने में कि सुन नहीं रही। अब कन्हैया ने कहा मेरे लिए मक्खन, मेरा गीत गा रही है, मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे को तो देख नहीं रही है, तो अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे सोचा और जो मंथनी चल रही थी ना उसको ऐसे पकड़ा। अब मंथनी पकड़ा तो काम रुक गया, काम जो निषेधित निषेध कर दिया काम को, तो यशोदा ने आंखें खोली, अरे काम रोक दिया, कन्हैया आ गया, लाला। माँ मुस्कुराने लगी, हाँ क्यों हंसने लगी, मुस्कुराया क्यों, बड़ा इंटेलिजेंट है, देखो मेरा अट्रैक्शन कैसे अपनी तरफ करा लिया, मंथनी ने काम रोक दिया और फिर इतना भारी मंथनी को पकड़ लिया इस 3 साल के बच्चे ने और रुक गई, इसका मतलब बड़ा शक्तिशाली है, इसका मतलब इसको हम जो खिलाते हैं ये काम कर रहा है, ये जो मक्खन खा रहा है ये बड़ा काम का है, बच्चे में शक्ति आ रही है, बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट भी है। अब माँ ऐसे सोच रही है तब तक कन्हैया दो पांव देके माँ की छाती पे चढ़ा, दूध पिलाओ, तो माँ ने कपड़ा ढक के मटके के ऊपर कपड़ा ढक दिया, मिट्टी का मटका था जिसमें मंथन हो रहा था, कपड़ा ढक दिया, लाला को बिठाया गोद में और दूध पिलाना शुरू किया। सुमित्तम मुस्कुरा रहा है, लाला भी बड़ा माँ का दूध पी रहा है और माँ भी सुमित्तम वो भी उसका मुख देख के मुस्कुरा रही, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और बड़ा आनंद का ये चौथा श्लोक है, बड़ा आनंद का दोनों में। पहले तो भगवान के मन में माँ के दूध पहन पीने के लिए लोभ हुआ, भगवान को किस चीज का लोभ है, आगे भगवान कहेंगे दूध तुम्हारा चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ इतना गिर रहा था उसके लिए मेरे को नीचे छोड़ के गई, मैं खीर सागर छोड़ के आया हूँ, मैं खीर सागर में रहता हूँ, खीर के सागर को छोड़ के आया हूँ और यहाँ इतने दूध के लिए मेरे को छोड़ के चली जा रही है, कैसी बात ना, खीर सागर में शयन करता है विष्णु, तो खीर सागर में शयन करता है, उसको छोड़ के आया हूँ मैं। तो ये जो रिलेशन है माँ और बेटे के बीच में, जब दूध पीता है बच्चा माँ का, और 3 साल का बच्चा माँ का दूध पी रहा था, यहाँ तो 1 साल तक भी नहीं पिलाती है माताएं, 3 साल का बच्चा माँ का दूध गोद में बैठ के पी रहा था, 3 साल का क्या, जब कृष्ण आए थे कुरुक्षेत्र में और यशोदा माँ उनसे मिली थी सूरज ग्रहण के समय, तब कृष्ण 100 साल की उम्र के हो गए थे, लेकिन उस वक्त भी यशोदा के स्तन से दूध गिरा था और कृष्ण उनकी गोद में बैठा था जाके, और वो सुख तब भी लिया था। तो ये माँ, ये दूध माँ का प्रेम है जो रस के रूप में बहता है, ये प्रेम है जो रस के रूप में बहता है। आजकल बच्चों से मातों का प्रेम बहुत कम हो गया, पहले तो बच्चे का जन्म देना ही नहीं चाहती है, वो ही नहीं तो अच्छा है, तो दूध कहाँ से होगा, जब बच्चा ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से होगा, पहली तो ये बीमारी कि नहीं हो तो इसका मतलब प्रेम तो पहले समाप्त हो गया, और फिर हो जाए तो दूध क्या करेंगे इसको पिलाकर। अभी जो दूध भगवान ने जन्म से पहले दूध पैदा किया है बच्चे के लिए, उसको नहीं पिलाती, ये बहुत बड़ी समस्या। यशोदा माँ सिखा रही है कि बच्चे को 5 साल तक दूध पिलाना चाहिए माँ को, उसको पद्मिनी माता बोलते थे, बहुत बड़ी उच्च कोटि की माता वो, जो अपने बच्चे को 5 साल तक दूध पिलाती थी, 3 साल वाली वो बहुत बड़ी उत्तम कोटि में, और 1 साल तक कामिनी कहलाती थी। तो इस अलग अलग नाम है माताओं के जो दूध कब तक पिलाती हैं बच्चों को। तो आज जब ये बच्चा दूध पीता है ना माँ का, ऐसे माँ का दूध पीता है तो माँ और बच्चे के बीच में प्रेम होता है, लेकिन माँ आज दूध नहीं पिलाती है इसलिए कि हमारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी चली है। तो किस चीज में दूध पिलाती है बच्चों को माए, हाँ माता जी किस में पिलाती है, बोतल में,
अब बच्चा क्या करेगा, बाटल में दूध पिया, बाटल की तरफ मुस्कुराएगा, ऐसा बाटल के साथ उसका रिश्ता जुड़ जाएगा, 8 साल का 8 रुपया लेके जाएगा कोको कोला की बोतल लाके पिएगा, 18 साल का 80 रुपया ले जाएगा और जानी वाकर लाके पिएगा, क्योंकि बोतल से रिश्ता हो गया ना। पहले मां से रिश्ता होता था, मां कहती थी बेटा मेरे दूध की लाज रखना, अब तो मां ये कहने का अधिकार नहीं रखते, दूध पिलाया ही नहीं है तो लाज क्या रखेगा, दूध की लाज वाला तो समा चला गया। और 40 साल तक होते होते अस्पताल में बोतल देखेगा और उसको देखता देखता मरेगा। तो बोतल मत पिलाओ, बोतल का दूध नहीं, मां का दूध भगवान ने नेचुरल बनाया है वो पिलाना चाहिए। ये सिखा रही है यशोदा, भगवान को दूध पीने की कोई लालसा नहीं है। अब बड़ा आनंद दोनों के बीच में हो रहा था, इतने बीच में यशोदा की दृष्टि गई चूल्हे के ऊपर पड़े हुए चढ़े हुए दूध के ऊपर, जिसकी रबड़ी बनानी थी, खीर बनानी थी कृष्ण के लिए शाम को, और वो दूध नीचे गिर के अग्नि में गिर रहा था। मां ने देखा रे दूध गिर रहा है, ये तो मेरा अपना दूध है बाद में पिला दूंगी, वो गिर गया तो कैसे काम चलेगा। कृष्ण को उठाकर नीचे रखा और मां भागी दौड़ती हुई। सनातन गोस्वामी कहते हैं अपने बच्चे को साथ ले गई होती ना उधर, छोड़ के क्यों गई। फिर कहा इसलिए छोड़ के गई कि एक तो गर्म दूध उठाना था, बच्चे को कहीं लग न जाए, और दोनों हाथों से उठाना पड़ता है बर्तन, तो बच्चे को कहां से पकड़ेगी। ऐसे आज की तरह थोड़ी बिल्ली के बच्चे की तरह पीठ को बांध के तो नहीं घूमते है या आगे कैंगरू की तरह बच्चा लटका के घूमते अच्छा तो नहीं बच्चे को तो छाती से लगा के मां रखती है। मां सब दुनिया के सिगरेट पीती है और बच्चा आगे लटका हुआ है ये क्या मुसीबत है। ये बच्चे से प्रेम का तो वातावरण नहीं है। तो मां बच्चे को वहां छोड़ा और मां ने देखा कि ये दूध कृष्ण के लिए है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये तो मेरा अपना दूध है अभी बाकी पिला दूंगी इसमें क्या। तो यशोदा ने तो ठीक किया, एक भक्त को भगवान की सेवा में लगाना था, लेकिन कृष्ण ने कहा अरे इतने छोड़े दूध के लिए मेरे को नहीं छोड़ गई, मैं भूखा। क्रोध आ गया, क्रोध में अपने लाल लाल होंठों को सफेद अपने दांतों से दबाने लगा। लाल होंठ रजोगुण है और सफेद दांत सतोगुण है, सतोगुण से रजोगुण को दबा रहे थे। क्रोध आया, मेरे को क्रोध क्यों आया है, कोप संजात कोप, क्रोध आ गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं जिसको जो आत्मा राम है उसको दूध पीने का लोभ हो गया, जो शांताकारम है उसको क्रोध आ गया। ये भगवान की विशेषता है विशेष। अब वैसे दांत दबाते ठीक है, मां दूध बचाना चाहती है, मैं दिखाऊंगा इसको क्या करना चाहिए। वहां एक मसाला पीसने का पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उठाया हाथ में पकड़ा, दूसरे हाथ से अपना हाथ में जो थे डाले हुए झुनझुने उसको पकड़ा, क्या आवाज होगा, और मटके का नीचे कैसे में दे मारा ठा, ऊपर मारे का खाली मटके तो बड़ा आवाज होगा, नीचे भरे हुए मटके को नीचे से मारा बड़ी बुद्धिमानी से। अब तो दही ऐसे बह बह के निकला, देखा बड़ा मजा आया दही बह रहा है, मजा आते आते मां मारेगी, एकदम मन में आया मां तो मारेगी, मटका तोड़ दिया मैंने। और ये मटका कहते हैं यशोदा की सास के जमाने का था, ये पुराना मटका मिट्टी के मटके को पुराना रखते, क्योंकि बहुत घी खाता है वो घी चूस चूस के बड़ा मोटा मटका होता है, उस मटके को बड़े संभाल के रखा जाता है। एक और जगह कभी कथा सुनने का मौका होगा तो अभी उसका संक्षेप हम बता रहे हैं। एक बार अर्जुन और कृष्ण जाते हुए एक जगह रथ को छोड़ा और आगे चले गए, प्यादल प्यास की इच्छा, पानी देखो, अर्जुन ने ऊपर पेड़ के जगह बोला थोड़ा धुआं है, उधर जाके देखते हैं कुटिया में एक स्त्री है तपस्विनी तपस्या कर रही है। अरे तपस्या कर रही, जाके प्रणाम किया अर्जुन ने, कृष्ण वहां जाके बैठा, तपस्विनी है लेकिन ये तलवारें क्यों टांगी है, तीन तीन तलवारें पड़ी, अरे तीन तलवारें रखी है इसने, क्यों रखी। तो अर्जुन ने कृष्ण से कही क्यों रखी बोला पूछो। तो अर्जुन पूछता है मां आप तो तपस्या कर रही हो, ये तीन तलवारें क्यों रखी है। बोला पहली तलवार
हरे कृष्णा पहली तलवार कब से बंद है, हरे कृष्णा पहली तलवार यशोदा मैया के लिए, उसका गर्दन काटूंगी। क्यों? बोला छोटे से लाले ने एक मट्टी का मटका तोड़ दिया, उसने रस्सी से बांध दिया, कितना कोमल उसका कमर और रस्सी बांध दी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको। मां ये दूसरी तलवार, बोलो ये अर्जुन का गला काटना है। बोला क्यों? बोला हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है, भगवान को आगे बिठा के घोड़े आंकवा दिए। बोला तीसरी, बोला ये द्रौपदी को मारना है। बोला क्यों? बोला क्या होता नंगी हो जाती तो, भगवान को साड़ी करके अपने ऊपर लपटा दिया, ये कोई भगवान, ये कृष्ण की सेवा करने का तरीका होता है। अब अर्जुन तो ये मेरे को और मेरी पत्नी के लिए तो तलवार। तो कृष्ण ने उस माता जी को बताया, वो कृष्ण की बड़ी भक्त थी, तपस्वी, कृष्ण के लिए ये कर रही थी। कृष्ण ने कहा यशोदा ने प्रेम के कारण मुझे बांधा था, मुझे नहीं कृष्ण को बांधा था, अर्जुन के प्रेम के कारण रथ को हांका था, और द्रौपदी कृष्ण की परम भक्त थी। बोले तुम्हें कैसे पता? बोला मैं कृष्ण हूं। तब मैया ने कहा ठीक है अर्जुन, तुमको मैं मारूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूं, तुम्हारे साथ तेरा गांडीव होगा फिर भी तुमको चोर लुटेरे लूट जाएंगे। और ऐसे ही हुआ अर्जुन के साथ। पर यशोदा को कृष्ण का वृहत जरूर जुदाई तो होगी होगी, यशोदा को मार मैं नहीं मारती हूं, लेकिन यशोदा और कृष्ण की जुदाई हो जाएगी। और द्रौपदी पांच पत्नी से प्रेम करती है अर्जुन से, आखिर में कोई उसको देखे ना, नीचे गिर जाएगी। और ये सब ऐसे हुआ। तो बात ये कर रहे थे कि मां यशोदा दूध उतारने गई और कृष्ण ने मटका फोड़ दिया। फोड़ने के बाद डर लगा थोड़ा, मां मारेगी तो भागे, वहां से भागे तो दही गिरे के ऊपर अपने पांव के निशान हुए और दूसरे कमरे में गए। और ये दिखाना था मां को कि मैं भूखा था, तुमने मेरे को दूध नहीं पिलाया, इसलिए एक उखड़ लिया, उसके ऊपर खड़े होके ऊपर से मक्खन उतारा कल वाला। और मक्खन कल वाला कहां खाता, कृष्ण ताजा मक्खन खाता है, कल वाले को ऐसे करके बंदर को दिया, बंदर भाई फेंक रहा है बंदरों को। यशोदा वापस लौटी, दूध को नीचे उतार कर मटके को फूटा हुआ देखा और हंसने लगी, अरे ये मेरे लड़के के काम है, मेरे लड़के ने मेरा मटका घर का तोड़ दिया, बड़ा शरारती हो गया, घर का संभालने के बजाय घर का ही तोड़ता है, कहां गया, दिखता नहीं है यहां। तब तक पांव के निशान देखे, उसको देख के दूसरे कमरे में गई तो बहुत से कौवे उड़ रहे थे मक्खन के लिए और बंदर थे। मैया ने हाथ में लाठी ली और कृष्ण ऐसे देख रहा था, मैया कहीं से आ तो नहीं रही, अचानक मैया को देखा आते हुए और उखल से कूदे और भागे। अभी आगे आगे कृष्ण भाग रहा है, पीछे यशोदा मैया भाग रही। और ये पहला श्लोक जो दामोदर अष्टक का है उसका ये दर्शन है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। ये तो है मंगलाचरण, ईश्वर सच्चिदानंद गोकुल का प्रकाश करने वाला, जिसके कुंडल चमक रहे हैं, गालों को दिखते चूम रहे हैं और गालों के प्रकाश से कुंडल चमक रहे हैं, उसकी लीला कौन सी, कौन है, ईश्वर है, मैं नमस्कार करता हूं, कौन सा वाला ईश्वर, यशोदा भी यो लोक ला दधा बना, यशोदा के भय से उखल से कूद के भाग रहा है, कैसा भगवान है ये, मैं प्रणाम करता हूं, मां यशोदा के भय से उखल से कूदा है और भाग रहा है। यशोदा भी का मतलब भय, फियरफुल ऑफ यशोदा, यशोदा भी यूल उखलाद धावना, उखल से कूदा और भागा। प्रामृष्टम अत्यंत दुर्त्य गोपिया, और गोपी बड़े प्रयास के साथ पीछे भागी और जाके पीछे से पकड़ लिए। इसलिए भागवत में लिखा है कि योगी हजारों साल तपस्या करते हैं, जिनके मन में थोड़ी देर के लिए कृष्ण टिकता नहीं है, उस साक्षात भगवान को ये गोपी पकड़ने गई और पकड़ लिया। क्या भाग है इस गोपी का, ये तो सुख न ब्रह्मा को मिला जो भगवान की नाभि से पैदा हुआ,
ये सुख तो शंकर को नहीं मिला जो भगवान का बहुत प्रेमी भक्त, ये लक्ष्मी को नहीं मिला जो भगवान के चरणों में बैठी है, ये गोपी को मिला इस यशोदा को, इसकी क्या महिमा है, ये भागवत में लिखा है। ये सुख और पकड़ा, जैसे पकड़ा तो दूसरा श्लोक आता है, रुदंतम युगमेन नेत्रम, रुदंतम रोने लगा, बच्चा क्या करेगा कोई पकड़ेगा तो, गलती करेगा माँ बाप पकड़ेगा तो क्या करेगा, रोएगा, दोनों आंखों से अपने कराम भोजम करम कमल से मशनिम ऐसे मसने लगा। तो सिर्फ आंखों को मसल रहा था, काजल सारा नीचे उतर के आ गया, और श्वास कंप त्रिरेखांत ये कर रहा था, इसको बोलते श्वास कंप, कंप का मतलब ऐसे श्वास ऊपर कांप रहा था, ये ग्रीव जो है, ये जो है ये कैसी है, बोला त्रिरेखा अंक, इसके ऊपर तीन लकीरें हैं, जैसे कंशेल के ऊपर होती है, ये जो बजाते हैं ना हम शंख, इसके ऊपर तीन लकीरें, उसकी सुंदरता, जिसके गले में तीन लकीरें ऐसे होती है सुंदर, उसके सुंदर नस बोलते हैं, उसके ऊपर जो आभूषण है, जो डाले हुए हैं मान है मालाएं, वो ये करने से ऊपर नीचे हो रही थी, रो रहा था, और ये शायद लठिया दिखा के है, मटका क्यों फोड़ा, चोरी क्यों करी, माखन क्यों बंदर को खिलाता है, नहीं करूंगा, और लाठी को देखता है डर के मारे, मां ने देखा। और उसी दिन कुंती महारानी जो वसुदेव के घर में द्वारका में गई हुई थी, और कुंती ने ये दर्शन किया था, इसलिए कुंती अपनी प्रार्थना में कहती है कि जिससे काल स्वयं भयभीत होके भागता है, वो उस गोपी से भयभीत होके मैंने देखा था रो रहा था, जिससे साक्षात काल भयभीत होता है वो गोपी से भयभीत होके रो रहा था, यशोदा देखा कि ये लाठी से डर रहा है, इसलिए लाठी मां ने फेंक दी, क्योंकि मां तो प्रेम करती थी, मां को मारना तो नहीं था, लेकिन उसको पकड़ के थोड़ा डांटने लगी। जीव गोस्वामी लिखता है कृष्ण ने पहले तो कह दिया मैंने थोड़ी फोड़ा है, आप जल्दी उठ के भाग गई ना, आपके पांव के अंदर इतना बड़ा मोटा चांदी का जो कड़ा डला वो लगा था, उससे टूटा है, मैं थोड़ा थोड़ा है, पहले तो सीधा बोला तुमने थोड़ा है, मैंने थोड़ा ही नहीं। जीव गोस्वामी ने ऐसे लिखा है गोपाल चंपू में, लेकिन फिर कहते नहीं नहीं मैं अभी नहीं तोड़ूंगा, तो माने बोला ठीक है, लाठी फेंक कर बोलिए आज तुमको अपने साथियों के साथ खेलने नहीं जाने दूंगी, तुमको बांध के यहां रखूंगी। यशोदा ने मन में सोचा कि डर के मारे कहीं भाग गया बाहर जंगल में तो भूखा है, कुछ खाया नहीं है, इसलिए बच्चे को थोड़ी देर के लिए बांध के रख लेती हूं, तो डर भी लगेगा और कहीं बाहर जाएगा भी नहीं तो कैसे शाम तक ढूंढेंगे इसको, तो प्रेम के कारण बांध के रखा था, बांधने के लिए मां ने प्रेम उसके पीछे था, कोई उसको दंड नहीं देना था। अब यशोदा ने बांधने का प्रयास शुरू किया, यहां अपने दामोदर अष्टक में आता है रुदंतम मुंह के बाद क्या है, त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रीवम दामोदरम भक्ति बदाम, रस्सी से नहीं बांधा, यशोदा की भक्ति से बंध गया, यहां खत्म कर दिया इसने, बंध गया। बोला ये लीला कैसे की, बोले तीद्रिक सुलीला भी आनंद कुंडे, ये लीला वृंदावन में केवल होती है और अपने ब्रजवासियों को आनंद के समुद्र में डुबाने के लिए, ये लीला मथुरा में नहीं होती है, द्वारका में नहीं होती है, वैकुंठ में नहीं होती, स्वघोषम अपने ही सारे भक्तों को आनंद के समुद्र में डुबाने के लिए भगवान ने ये लीला की, और ये सबको दुखाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं, भक्ता जितत्व, भक्त जीत जाता है और भगवान हार जाता है, ये दुनिया को बताने के लिए भगवान ने ये लीला की कि भगवान हार जाते हैं और भक्त जीत जाता है, भक्तिम जितत्व सतावर्ती बंदे, मैं हजार बार उस गोपाल को प्रणाम करता हूं। यहां तक सत्यवर्ती में, इसके बाद तीन श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहां मां वहां बांधने के लिए रस्सी लाओ, लाए उखल में बांधी, कन्हैया की कमर में बांधी, यहां तक लाई, अरे बंद नहीं हो रही है, एक और लाओ तो बांधी, नहीं बंद हो रही, अरे एक और लाओ तो, अभी तो 10-20-25 घर की सारी रस्सियां इकट्ठी कर दी, यहां आए तो गांठ लगती नहीं है, दो उंगल छोटी, दो इंच रस्सी छोटी, अरे तो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। अब तो 5:30 का टाइम हो गया, तो गोपियां देख रही है नंदरानी क्यों भाग रही है, बच्चे को क्यों बांधने का प्रयास कर रही है। और हंसने लगी गोपियां कि इसके भाग में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ो यशोदा इसको। यशोदा को विस्मित, विस्मित का मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये मोटा तो इसकी ये नहीं हो रहा है, रस्सी छोटी नहीं हो रही है, ये 100 रस्सियां इकट्ठी की है, इसके कमर मुट्ठी जितनी है, इसमें सुबह काला धागा बांधा था वो अभी तक बंधा हुआ है, रस्सी बंध नहीं रही है, क्या हो क्या गया। और सब वो हंसने लगी जब गोपियां, तो यशोदा मुस्कुराती है, सुमित्रियां स्वयं मुस्कुराती हुई कहती है शाम भी हो जाएगी तो इसको बांध के रखूंगी। सुबह 6 बजे कह रही है शाम हो जाएगी तो भी बांधो। अभी तक तो कृष्ण की जो अचिंत्य शक्ति और संकल्प शक्ति थी वो भगवान को बंधन में आने नहीं दे रही थी, लेकिन कृष्ण जब देखा कि मां कहती है शाम तक भी बांधने के लिए प्रयास करेगी, तो कृष्ण ने मां की तरफ देखा। जैसे मां को देखा तो लिखा है मां ने बहुत परिश्रम किया था, मां के बालों से फूल नीचे जड़ रहे थे, मुख के ऊपर पसीना पसीना हो गया था, हो गई थी, और कृष्ण के हृदय में करुणा का उत्पन्न हुआ, करुणा उत्पन्न हुई। स्वमात्रा स्वमात्री अपनी मां को परिश्रमम, उसका परिश्रम देखा तो भगवान के हृदय में दया उत्पन्न हुई और यशोदा ने गांठ लगाई और कन्हैया बंध गया भगवान की कृपा से। बोला ये 2 अंगुल क्यों नहीं छोटा, रस्सी क्यों पड़ रही थी। हमारे आचार्य लिखते हैं भगवान की भक्ति में ये 2 अंगल हमेशा छोटे रहते हैं, 1 अंगल भक्त का प्रयास होना चाहिए। कितना प्रयास, यशोदा की तरह शाम तक बांधूंगी, ये काम करने के लिए पसीना पसीना हो जाए, अपनी सारी शक्ति लगाएगा भगवान की सेवा में, और भगवान जब देखता है कि मेरे लिए ये इतना परिश्रम कर रहा है तो भगवान के हृदय में दया आती है। तो 1 उंगल भक्त का परिश्रम और 2 उंगल भगवान की कृपा, जब ये 2 इकट्ठे होते हैं तो भगवान प्रेम से बंध जाते। तो यहां गोपाल बंध गया, मां जाके अपना काम करने लगी। कन्हैया ने देखा थोड़ी देर सामने, हाँ 2 पेड़ सामने खड़े हैं, अर्जुन उनका नाम है, एक मेरा सखा अर्जुन अभी छोटा, एक आगे चल के अर्जुन मेरा सखा होगा, अरे मेरे सखा के नाम के ये 2 पेड़ हैं, और फिर नारद ने इनको श्राप दिया है, कहा कि मैं इनका उद्धार करूंगा, तो नारद का एक कारण भी मैं बंध गया हूं, मेरे को नारद की इच्छा भी पूरी करनी थी, तो इनका उद्धार करते हैं। क्या उद्धार कैसे करेंगे। अब कन्हैया ने उखल को टेढ़ा किया, आगे कन्हैया चल रहा है हाथ पांव से, उखल पीछे गोल गोल घूमता जा रहा है, कन्हैया 2 अर्जुन पेड़ों के बीच से निकल गया, उखल पीछे अटक गया और कुछ खेचातानी नहीं की, लेकिन उखल के लगते ही 2 पेड़ नीचे गिरा। ये आपके मॉरिशस में बहुत अर्जुन पेड़ है, पूरे रोड के ऊपर जाते हैं ना, ओल्ड फ्रैक रोड के दोनों तरफ अर्जुन पेड़ है, यहाँ आपके साइक्लोन आते हैं दोनों नहीं गिरते हैं, और वहां 3 साल का बच्चा उखल से गिरा दिए 2 पेड़, ये बड़ा आश्चर्य है, 2 पेड़ टूट के नीचे गिरे, और कन्हैया दोनों के बीच में, दोनों पेड़ों के अंदर से 2 देवता निकले। कृष्ण का प्रणाम किया, परिक्रमा की और प्रार्थना की। कृष्ण ने कहा आप जाइए। अब पेड़ों का आवाज सुनकर नंद बाबा गौशाला से भागते हुए आए, छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, बोला ये कन्हैया कहां बंधा हुआ है, ये पेड़ किसने गिराए। वो बच्चे बोलते हैं इसने गिराए। नंद बाबा बोलते इसने गिराए, इससे 2 बड़े पेड़ गिरेंगे। बोला इसने गिराया नहीं, 2 देवता निकले भाग गए। बोला चुप, बच्चों को कुछ पता नहीं, बच्चा सच बोलता है, कोई नहीं मानता है। एकदम नंद बाबा ने खोल दिया कन्हैया को, खोल के गोद में उठा लिया, और कोई खोल नहीं पाया, बहुत से सखा आए थे लेकिन खोल नहीं पाए, क्योंकि वात्सल्य के प्रेम से बंधा हुआ था। नंद बाबा ने कन्हैया को बाद में खोल दिया, और तब पूछा तुम माता का बेटा है कि मेरा बेटा है। बोला आपका बेटा हूं, माता जी ने मेरे को बांधा है, उसके पास नहीं जाऊंगा। इतनी देर में रोहिणी आई, बलराम आया कि यशोदा, कन्हैया को बोला बोला नहीं जाऊंगा वहां। बोला मां मूर्छित हो गई, कन्हैया एकदम कूद के भागा, और वहां जैसे जाके पहुंचा गोपाल चंपू में लिखा है, कन्हैया भी रो रहा है मां की गोद में, मां भी रो रही है, नंद बाबा भी वहां गया है, ये सब इकट्ठे होके रो रहे हैं और आनंद भी हो रहा है। तो ऐसे ये लीला समाप्त होती है, दामोदर लीला, बड़े अंदर सुंदर
भाव हैं इस अष्टकम के। अब कभी और समय मिलेगा तो दूसरे तीन चार श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन ये दामोदर कृष्ण, ये यशोदा दामोदर है, लेकिन राधा दामोदर भी है। राधा रानी ने कृष्ण को बांधा था, इसलिए उसका नाम राधा दामोदर है। एक बार कृष्ण टाइम से आए नहीं, देर से आए। राधा रानी ने बोला, देर से क्यों आए? पेड़ के पास खड़ा कर दिया और बहुत सुंदर लताएं लेकर आई, वाइन्स, और कृष्ण को बांधा। बोला, क्यों देर से आए? बोला, यशोदा माँ ने रोका था। बोला, अच्छा, यशोदा ने रोका था, चलो खोल देती हूँ। तो राधा दामोदर नाम उनका ऐसे पड़ गया। और गोपियों ने, ब्रह्मा जी ने एक बार राधा और कृष्ण के पल्ला आपस में बांध दिया था, तो इसलिए भी राधा दामोदर कहते हैं। तो इस कार्तिक महीने में सनातन गोस्वामी कहते हैं राधा दामोदर की पूजा करनी चाहिए, राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और प्रभुपाद से कभी पूछा था कि हम ऐसे दामोदर को रखना जरूरी है? बोला, नहीं, राधा कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। रखो तो भले रखो, लेकिन राधा कृष्ण को निश्चित रूप से अर्पण करना चाहिए। तो अपने घरों में जहां राधा दामोदर रखते हैं पूजा के लिए, यशोदा दामोदर, राधा कृष्ण का सुंदर चित्र होना चाहिए, उसको भी दीप प्रतिदिन अर्पण करना चाहिए, जैसे यहाँ है, तो ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद परशुराम और सब परिवार का, और आप सब भक्तों का। हरे कृष्ण। हो गया 50 मिनट्स। किसी का कोई जिज्ञासा है तो बोलिए,
कोई प्रश्न है तो पूछना।
इति दृक्व सलीला भी आनंद को